नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे, सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है, यह जीवन की गति रही है। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही हैं। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है, संभव होना है फिर भी। उठो वैरागियों, उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
दिव्य ध्येय की और तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, सच धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटो ही पथ पर संभल संभल बढ़ता है। जीवन भर अविचल चलता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है। जीवन भर अविचल चलता है, सफल विफल और आस निराशा, इसकी ओर कहां जिज्ञासा, बिहड़ता में राह बनाता राही मचल मचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है, पतझड़ के झंझावातों में, जग के घातों प्रघातों में, सुर भी लुटाता सुमन सिहरता, निर्जनता में भी खेलता है। जीवन भर अविचल चलता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। साधना का मार्ग है, साधना की निरंतरता कुंजी है। साधना खंडित ना हो, सतत साधना, साधना का सातत्य एक दिन उस गंतव्य तक पहुंचाएगा। साधना सूक्ष्म है, अंतर्मन के साम्राज्य में प्रवेश करने की साधना है। छुपे हुए भाव, दमित भावनाएं, सप्रेस्ड इमोशंस, मुरली ज्ञान, योग, सेवाएं, इन सब ने ऊपर ऊपर की सफाई तो कर दी है, परंतु लक्ष्य है अवचेतन में जो छिपे हुए विकार है, सबकॉन्शियस माइंड में, गहरी परतों में। जो डीपली बैठे हुए संस्कार है उन तक पहुंचना, उनको देखना, उनको जानना, उनको समझना, और उनका वहां से निर्मूलन करना, निर्झरा, उसे कहते हैं निर्झरा। यहां से वो निकल जाए, समूल विनाश करना, ताकि वो वापस वापस उभर उभर कर चेतन मन पर न लौटे, क्योंकि विकार जब चेतन मन पर आते हैं तो व्याकुलता होती है, बेचैनी होती है, एक जाता है, फिर उसका शमन होता है, वो शांत होता है तो दूसरा आता है। ये प्रक्रिया निरंतर चालू है, इसलिए ऐसा कोई कह नहीं सकता कि सारे विकर्म विनाश हो गए, क्योंकि सभी के संस्कार बीज रूप में भीतर समाये हुए। इन बीजों को नष्ट कर देना, जला देना, ताकि वो अंकुरित ना हो, पल्लवित ना हो, वो पेड़ न बन जाए, पौधा न बन जाए, पेड़ न बन जाए, वटवृक्ष न बन जाए। तो साधना बहुत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म। बाहर से स्थूल रूप दिखाई दे रहा है, परंतु काम सबकॉन्शियस माइंड पर हो रहा है, क्योंकि वो अज्ञात क्षेत्र, अननोन टेरिटरी को छेड़ा है, जिसमें सब कुछ सुरक्षित रूप से समाया हुआ था, और ऊपर एक संतुष्टता थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ज्ञान चल रहा है, योग चल रहा है, अमृत वेला चल रहा है, मुरली चल रही है, परंतु सफाई केवल ऊपर ऊपर की हो रही थी, भीतर की नहीं। भीतर तो भय है, भीतर तो एंग्जाइटी है, भीतर तो बेचैनी है, हजारों प्रकार के भय बेचैनियां अंदर छिपी हुई है। इसलिए साधना कैसी हो? निरंतर, सतत, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अविचल चलता है, बिना विचलित हुए। और विचलित करने वाली बहुत सी चीजें आएगी, सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही, हे बटोही हे पथिक हे राही। होकर सबसे विमुख बटोही, पथ पर संभल संभल बढ़ता है, प्रलोभन बहुत है, जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, कामना है उत्सर्ग की, उत्सर्ग अर्थात उत्सर्ग की कामना है। एक है त्याग, त्याग करना, एक है छोड़ देना, फिर है त्याग करना, वो उससे बड़ा है, फिर है बलिदान, वो उससे बड़ा है, एक उससे भी बड़ा है कुर्बानी। और एक उससे भी बड़ा है उत्सर्ग, सर्वस्व सहा करना। हे जीवन नातरि व्यर्थ सर्वस्व त्यास अर्पीन, बलसागर भारत हो वो, सर्वस्व समर्पित कर देना संपूर्ण जीवन, वो है उत्सर्ग। प्राणों में उत्सर्ग की कामना है। जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है। साधना है किसकी? गलने की। सफल विफल और आस निराशा, इसकी ओर कहां जिज्ञासा, बिहड़ता में राह बनाता, ये यात्रा ही बिहड़ता की यात्रा है। सुनसान प्रदेश है, बिहड़ भूमि, बिहड़ जंगल है, उबड़ खाबड़ कुछ नहीं दिखता है। खांडव प्रस्थ है, उसे इंद्रप्रस्थ बनाने की यात्रा है। राही मचल मचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, पतझड़ के झंझावातों में, जग के घातों प्रतिघातों में, सुरभि लुटाता सुमन सिहरता, निर्जनता में भी खेलता है, जीवन भर अविचल चलता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी। तो लक्ष्य ऊंचा है, ध्येय बहुत ऊंचा है और दिव्य है, इसलिए निरंतरता कुंजी है। इस ज्ञान को समझना है, इस ज्ञान को धारण करना है, इस ज्ञान को स्मृति में रखना है, इस ज्ञान को जीवन में लाना है, इस ज्ञान का स्वरूप बनना है, इस ज्ञान को सिखाना भी है। आज की मुरली सिखाओ तो वो समझ जाएंगे, सिखाने से समझेंगे। ज्ञान का स्वरूप बनना, ज्ञान को स्मृति में रखना, ज्ञान को समझना, ज्ञान का चिंतन करना, सारा कार्य इस ज्ञान के इर्द गिर्द करना है। जो किताबों में लिखा है क्या वास्तव में वैसा ही है? जो मुरलियों में आया है क्या जीवन में वैसा ही है या कुछ और? दो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जंगल में फोटो खींचते खींचते भटक जाते, बिहड़ जंगल, और वहां पर अचानक उनके सामने एक शेर आ जाता है। एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कहता है, रुको, घबराने की कोई बात नहीं, किताबों में हमने पढ़ा है ना, जब ऐसे शेर आ जाता है तो क्या किया था लोगों ने, एकदम स्थिर हो जाओ, श्वास को रोक लो, मूर्ति जैसा बन जाओ और शेर की आंखों में देखो और शेर चला जाएगा। दूसरा कहते हैं, हाँ किताबों में तो हमने पढ़ा था, पर क्या शेर ने किताब पढ़ी थी वो, इसलिए लेट्स रन, क्योंकि ये तो किताबी ज्ञान है, अभी चाहिए भागो, क्योंकि शेर ने किताबें नहीं पढ़ी, उसे नहीं पता। इसलिए किताब का ज्ञान किताब का ज्ञान है। जब तक वो जीवन में नहीं दिखता, हम उसको कंफर्म करें, प्रमाणित होना चाहिए। वो मुरलियों में तो आ चुका है, अव्यक्त वाणियों में आ चुका है, परंतु प्रमाण है। जीवन में जब उतरता है, हम देखते हैं ऐसा लिखा है और हमने ऐसा किया और भगवान ने कहा था ये परिणाम मिलेंगे। अगर वो परिणाम नहीं मिल रहा है तो या तो ज्ञान ही गलत है या हमारे पुरुषार्थ में कमी है। दो ही संभावना है। यदि हम सोचते हमारा पुरुषार्थ संपूर्ण है तो जरूर ज्ञान में त्रुटि है। साधना का ये चार चरण है। 30 दिन पूरे हुए, दूसरे 30 दिन क्या आज का 15वां दिन, 16वां दिन, 15 दिन पूरे हुए, 27 और 21, ऐसे चार चरणों में ये साधना है 108 दिनों की। इस प्राणिक जीवन के 3 चरण हैं जिसकी आज चर्चा हम करेंगे। उससे पहले इस ज्ञान के भी कुछ चरण है। सबसे पहला है कोर्स 7 डेज का शिविर या 7 दिन का प्रारंभिक साप्ताहिक कोर्स। दूसरा मुरलिया साकार अव्यक्त। यहां ज्ञान और गहरा होता है। यह शुरुआत था, यह आरंभ, उसके बाद में उसकी गहराई। तीसरा बाबा मिलन, यहां निश्चय, ज्ञान, परिपक्वता, समझ और गहरी होती है। तो निश्चय ज्ञान यहां पर और गहरा होता है। चौथा भट्टी करना, ज्ञान की भट्टिया, योग की भट्टिया, चाहे सेंटरों पर या फिर मधुबन में रिट्रीट सेंटर्स पर, इन भट्टियों में पहली बार अनुभव होता है कि ज्ञान कितना गहरा है। वो 3 दिन का मौन, वो 4 दिन का मौन, 7 दिन का मौन, सुबह से लेकर रात तक एक बनी बनाई दिनचर्या, मोबाइल स्विच्ड ऑफ, यहां ज्ञान के कुछ नए राज खुलते हैं। भट्टिया करना, उसके आगे की स्टेज है भट्टिया कराना। यहां पर लोगों के अनुभव पता चलते हैं और स्वयं में छिपे हुए अहंकार का साक्षात्कार होता है। और उसके बाद है छठवा सोलो भट्टी, हम स्वयं ही स्वयं की भट्टी करना सीखते हैं। स्व शिविर, 3 दिन की एकांत की भट्टी, 3 दिन की मौन की भट्टी, 1 दिन की मौन की भट्टी। ना किसी को बताना, ना किसी को कुछ कहना, स्वयं ही स्वयं की भट्टी का आयोजन। स्वयं ही वक्ता है, स्वयं ही स्पीकर है, स्वयं के ही गीत है, स्वयं की ही क्लास है, स्वयं का ही निर्धारित समय है, स्वयं का एकांत है, मौन है, सॉफ्ट म्यूजिक है, गीत भी स्वयं के ही है, सब कुछ स्वयं का। इसे कहते हैं स्व शिविर। और उसके बाद है 7वां एडवांस्ड स्पिरिचुअल नॉलेज, और वो है प्राणिक यात्रा। जहां हम 7वें चरण में ये सब कुछ कर चुके और अब प्रवेश कर रहे सबसे भीतर अपने अवचेतन मन की गहराई में, और उसका संबंध हम पा रहे हैं किन किन चीजों से, ऊर्जा से। ये सातवां चरण है ऊर्जा के जगत में प्रवेश। यात्रा तो, और इस यात्रा में कोई अभी पहली स्टेज पर है, कोई दूसरी, कोई तीसरी, कोई चौथी, कोई पांचवी, कोई यहां आकर फिर पहली, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और इस अंतिम स्टेज में भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसलिए दिव्य देह की ओर तपस्वी अभी चल चलता रहता है, निरंतर चलते रहना है। किसी को ये पता ही नहीं कि ये भी एक स्टेज है, ये भटिया जैसे यही सब कुछ है, परंतु ये भटिया है ही नहीं जिसको हम भट्टी कह रहे हैं। भटिया अर्थात कंप्लीट लॉकडाउन, वैसी भटिया अभी तक हुई नहीं। भटिया अर्थात सबसे पहले कम से कम लोग, 10 लोग, 15 लोग, 30 लोग, बस। भट्टी अर्थात बस एक जगह पर, एक क्षेत्र पर लॉक्ड, कहीं निकलेगा नहीं कोई। भट्टी अर्थात टोटल साइलेंस। भट्टी अर्थात कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। भट्टी अर्थात कोई क्लास नहीं उसमें, ज्यादा से ज्यादा एक क्लास बस। आर्य मौन, कंप्लीट मौन। ये जब होगा तो समझना वो भट्टी है। अभी जो चल रहा है वो वाणी विलास है, यह बुद्धि विलास, कनरस है उसमें, गीत है उसमें, संगीत है उसमें, आवाजें है उसमें, भोजन है उसमें, क्या कुछ है वो सब कुछ बाह्यमुखी बना रहा है। रियल भट्टी है साइलेंट रिट्रीट, जहां कोई वक्ता नहीं है, जहां सब मौन में है, जहां सब चुप है, और मुख्य प्रकृति के सानिध्य में, खुले में, वो है रियल भट्टी। और इस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं हम सब भटक गए। तो प्राणी की यात्रा के का आज का 46th वाडे। अचानक कोई बीच में आके बैठ जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और यहां क्या चल रहा है और किस तरह की बातें हो रही है, इसलिए नॉट अलाउड, क्योंकि ये साधना गहरी साधना है। अब तक जो कुछ सुना है 45 डेज में, जिन्होंने खुद पर प्रयोग किए होंगे उन्होंने जाना होगा कि कुछ तो गहरा हो रहा है और बहुत डीप हो रहा है, जो अब तक नहीं हुआ था। पहला चरण इनिशिएशन। इनिशिएशन अर्थात आरंभ, दीक्षा। दूसरा फेज, इन तीनों फेज से सबको गुजरना है। दूसरा फेज है एडेप्टेशन फेज, जिसमें हमारी बॉडी एडेप्ट करने लगती है। और तीसरा फेज है मैनिफेस्टेशन फेज। मैनिफेस्टेशन अर्थात अभिव्यक्त होना चालू होता है। हमारा इनिशिएशन फेज इस भट्टी के अंतिम 21 दिन का है, तो अभी हम इनिशिएशन के पहले की स्टेज पर है, अर्थात तैयारी मात्र है। यह केवल एक लंबी भूमिका अभी चालू है। इस भट्टी 108 दिन के, इस भट्टी के अंतिम 21 दिन जो होंगे वो होंगे इनिशिएशन फेज के। तो अभी हम कहां हैं, इसके पहले, प्री इनिशिएशन फेज में। वो 21 दिन का इनिशिएशन फेज होगा, और उसके बाद जब भट्टी पूरी हो जाएगी तब चालू होगा हर एक का एडेप्टेशन फेज। वो कुछ साल तक चलेगा, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 2-3 साल, किसी को 4-5 साल, और उसके बाद में फिर होगा लास्ट मैनिफेस्टेशन फेज, जहां पर बॉडी एकदम तीनों ही क्राइटेरिया प्रकट होने लगेंगे। व्यक्ति न खा रहा है न पी रहा है, परंतु वेट स्टेबल, शरीर का वेट भोजन की निर्भरता से मुक्त हो जाएगा। अभी कम खाए तो वेट कम होता है, ज्यादा खाओ तो वेट बढ़ता है, कम ज्यादा होते रहता है, वहां होगा वेट स्टेबिलाइजेशन, स्थिर हो जाएगा। व्यक्ति संपूर्ण ऊर्जा पर स्थिर होगा, ऊर्जा बहने लगेगी, प्राणिक सेंटर्स खुल जाएंगे। दूसरा, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगी, कोई थकान नहीं, और जो भी हमने दिव्य शरीर की चर्चा की वो सब कुछ दिखाई देने लगेगा कि ऐसा हो रहा है, साइंस क्या कहता है और ये क्या कहता है। साइंस कहता है इतनी कैलोरीज चाहिए, 2000 कैलोरीज चाहिए, यहाँ व्यक्ति 10 कैलोरीज, 100 कैलोरीज, 200 कैलोरीज या 1000 कैलोरीज, और एकदम ऊर्जावान है। 1000 कैलोरीज बस, साइंस एक्सेप्ट नहीं करता है इसको, साइंस कहता है ये चाहिए वो चाहिए, 2000 कैलोरीज चाहिए, 2200 कैलोरीज चाहिए, फीमेल्स 1800 कैलोरीज चाहिए, मेल्स 2000 चाहिए। यहाँ व्यक्ति 100 कैलोरीज 200 कैलोरीज पर है साइंस की भाषा में, परंतु संपूर्ण ऊर्जावान है, शक्तिशाली है, सब कुछ कर रहा है जैसे बाकी लोग करते, परंतु हंगर सेंसेशन से परे निकल गया है। भूख तीन लोगों को नहीं लगती, पहला जो रोगी होता है, शरीर से रोगी होता है, बीमार है, वो कहते हैं भूख लगने की दवाइयां दो, उनको दवाइयों की आवश्यकता है, वो देनी पड़ती है, शारीरिक रोगों से बीमार है इसलिए भूख नहीं लगती है। दूसरे है मानसिक रोगी है, उदास है, इसलिए भूख नहीं लगती। और तीसरा है अभ्रदारियन, अयोगी, योगी भूख से परे निकल चुका है, विजय प्राप्त कर लिया। ये यात्रा तीसरी यात्रा है, ये रुग्ण होने की यात्रा नहीं है, जिसमें व्यक्ति को भूख ही नहीं लगती है, वहां तो उसको देना पड़ता है टॉनिक्स ताकि भूख लगे, क्योंकि शरीर में विकार है, शरीर में टॉक्सिन्स भर है, इसलिए भूख नष्ट हो गई है, वहां तो भूख लगनी चाहिए। भूख लगना स्वास्थ्य का लक्षण कहा जाता है, कड़ी भूख लगना, ये सबसे परे की यात्रा है, ये योगी की यात्रा है, जहां योगी इन छोटी छोटी सब अवस्थाओं से बाहर निकल जाता है। डिपेंडेंसी उसकी बाहर के किसी भी पोषण पर नहीं रहती, वो प्राण ऊर्जा से जीता है। यह है थर्ड फेज प्राणिक यात्रा का तीसरा चरण, जहां पर उसके सारे बेनिफिट्स उसको दिखाई देने लगते हैं। और तीसरा, नींद आधी हो जाती है पुरस्कार के रूप में। तो ये जो तीन क्राइटेरिया जब फुलफिल हो गए, तब तीसरी अवस्था आएगी। पहला वेट स्टेबल, अभी थोड़ा सा भी कम किया डाइट तो क्या होता है, वेट प्रभावित होता है, तुरंत कम होता है, घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता है। यहां पर कॉस्मॉस विल डिसाइड योर वेट, अपने आप स्टेबल होगा, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, एनर्जी लेवल्स वेरी हाई, बहुत हाई लेवल, मैं थक गया हूं, मुझे थकान आती है, और शरीर संपूर्ण रोगों से मुक्त होगा, शरीर सभी रोगों से मुक्त। और धीरे धीरे जब शरीर मुक्त होगा तो शरीर पवित्र, तो आत्मा अपने आप पवित्र होगी, शरीर तापमान के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। अभी शरीर में टॉक्सिन्स जितने भरे उतनी ज्यादा ठंडी लगती है। तीसरा, नींद हाफ, ये थ्री क्राइटेरिया है ब्रदारियन लाइफस्टाइल के, ये मैनिफेस्ट होने लगेंगे, पर ये कब, तीसरी अवस्था में, उसके पहले से कुछ साल गुजरने पड़ेंगे बीच में, किसमें, एडेप्टेशन फेज में, इसमें वेट कम ज्यादा होते रहेगा, परंतु व्यक्ति यही भूख से मुक्त हो चुका है। पर हाँ, यहां सोशल बॉन्डेजेस है समाज, क्योंकि जिस समाज में वो रहता है, जीता है, वहां की मर्यादा है, इसलिए उसको खाना पड़ता है सोशल इवेंट्स में, परंतु वो खाता है इसलिए नहीं कि उसे भूख है, सोशल रीजंस के लिए, पर वो मुक्त है, उसके शरीर को चाहिए नहीं, क्योंकि मन ही मुक्त हो चुका है इन वासनाओं से। यह है सेकंड फेज, और पहली फेज है इनिशिएशन फेज, जो हम करेंगे अंतिम 21 दिन इस भट्टी के, और अभी हम कहां हैं, उसके पहले वाली फेज पे, प्री इनिशिएशन फेज, क्योंकि ये सारा ऑपरेशन चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड का, इतना गहरा ऑपरेशन है ये, और ऑपरेशन जब होता है तो क्या लगता है वहां पे, लाल बत्ती? रिश्तेदारों को अलाउड है क्या अंदर? कोई अलाउड नहीं है, अकेले का ऑपरेशन है ये। आत्मा पर चिरा लगाना है, यहां पता नहीं इसमें से क्या क्या निकल के आ जाएगा। इतना पस पीप जन्म जन्म की वासनाएं, घृणा नफरत ईर्ष्या भय क्रोध काम, क्या क्या भरा है इसमें, हमें ही पता नहीं क्या निकलने वाला है। बस अब चीरा लगाना है, चीरा लगते ही अचानक कई बार ऑपरेशन में लोग सरप्राइज हो जाते हैं, जो सोनोग्राफी में नहीं दिखा, जो सीटी स्कैन में नहीं दिखा, एक्चुअल जब ऑपरेशन होता है और पेट खोला जाता है तो कुछ और ही निकल के आता है। इसलिए पेट को कहा जाता है पेंडोराज बॉक्स मेडिकल साइंस में। पेंडोरा बॉक्स अर्थात वो एक बॉक्स था कि जिसमें अजीबोगरीब चीजें निकलती है, कुछ भी निकल सकता है, इसके लिए पेट को पेंडोराज बॉक्स कहते हैं। सर्जन ने सीटी स्कैन कराया, यूथ्रोनोग्राफी कराई, उसमें ये सब है और सोचता है अभी ऑपरेशन करूं, ऑपरेशन करने खोलता है तो दिखता है कुछ और ही है ये, तो उसमें इतनी छोटी गांठ दिखी थी, इसमें इतनी बड़ी गांठ, कुछ के कुछ निकलता है, पेंडोराज बॉक्स। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड भी पेंडोराज बॉक्स है। इस आत्मा पर चीरा लगाना है तो कितना एकांत चाहिए और कितना मौन चाहिए और कितनी एकाग्रता चाहिए, और अकेले की क्रिया है ये, शल्य क्रिया हो रही है, सर्जिकल स्ट्राइक, बड़ा गहरा और डीपेस्ट ऑपरेशन है ये चेतना का। इसलिए दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी अविचल बढ़ते रहता है, हे बटोही चलते जा। सबसे गहरी चेतना पर, सबसे गहरे आसक्ति पर हाथ डाला है, जिस पर कुंडली मार कर बैठे थे अब, बाकी सब करेंगे, इसको हाथ मत लगाना, बस इसको जैसा है वैसा ही रखेंगे, बाकी ज्ञान करेंगे, तपस्या करेंगे, योग करेंगे, सोमान लेंगे, भट्टी करेंगे, कराएंगे सब, पर ये वाली जो चीज है ये मेरी सबसे प्रिय है, इसको हाथ मत लगाना, बस ये जो है वही रहेगी, और वो है भोजन। तो आज हम देखेंगे ये तीनों, तीनों में सबसे पहला इनिशिएशन, इनिशिएशन अर्थात दीक्षा, इनिशिएशन अर्थात दीक्षा। ये एक दीक्षा जो ली जाती है ना, गुरु से दीक्षा लेते हैं तो कितनी बड़ी प्रक्रिया मानी जाती है, कितना बड़ा उसको महत्व होता है संसार में, संस्कार है जैसे वो एक, वो जितना उसमें ज्यादा सब कुछ होगा बाह्य उतना गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे शादी, वो सब कंडीशनिंग है ना, पूरी डीप कंडीशनिंग है, नहीं तो शादी अर्थात दो लोग गए साइन कर दिया शादी हो गई, वर नहीं, सब कुछ तैयारियां दो दो महीनों से चलती है, छः छः मास पहले से तैयारियां चलती है ताकि वो तैयार हो जाता है, मैं पति हूँ, मैं दूल्हा हूँ, कंडीशनिंग चालू हो जाती है, डीप कंडीशनिंग। फिर वो वेडिंग की तैयारियां, वो इनविटेशन कार्ड्स, फिर वो छपा हुआ नाम दिखता है, मतलब उसके अंदर गहरा जा रहा है, वो डीप जा रहा है, वो अंदर से वो तैयार हो रहा है, डीप वो सारी तैयारियां, वो बैंड बाजे, वो घोड़ा, वो बधाइया, वो भोजन, वो सारा क्या है, सब कंडीशनिंग है, ताकि ये जो बंधन बनेगा बड़ा गहरा होना चाहिए, इतना जल्दी नहीं टूटना चाहिए, इतना पति पत्नी दोनों प्रार्थना करते हैं, पति पूछता है तुमने क्या मांगा, पत्नी कहती है मैंने मांगा कि 7 जन्म तक आप ही मेरे पति हो, पत्नी पूछती है तुमने क्या मांगा, वो कहता है मेरा यह अंतिम जन्म। तो ये सब कंडीशनिंग है। उसी तरह से दीक्षा जो होती है, इनिशिएशन जो होता है, बड़ा ही सेक्रेट प्रोसेस है। समर्पण अगर देखा जाए तो समर्पण समर्पण हो गए, समर्पण खत्म, पर नहीं, क्या किया जाता है, ग्रैंड सेलिब्रेशन, क्यों, ताकि वो गहराई में चला जाए कि अभी हम संपूर्ण स्वाहा हो चुके हैं, इस कंडीशनिंग के लिए। नहीं तो दादियों के समय ऐसा कुछ हुआ था क्या? सिले समारोह कुछ नहीं, वो ऑलरेडी कंडीशन थी। तो ये सारी कंडीशनिंग है। उसी तरह पहली स्टेज है इस यात्रा में इनिशिएशन, दूसरी अडेप्टेशन, और तीसरा है मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्त होने लगता है वो सब कुछ। तो फर्स्ट स्टेज है इनिशिएशन। अब इसकी अलग अलग प्रोसेसेस है, और वर्तमान समय जो सबसे प्रसिद्ध है पर अभी कोई यूज नहीं करता है उसको, या फिर वो रिजेक्ट हो चुकी है वो प्रोसेस, जिसकी शुरुआत इससे हुई थी, 21 दिन की प्रोसेस, 21 डेज इनिशिएशन प्रोसेस, जसमोहिन्स 21 डेज इनिशिएशन प्रोसेस, या चारमोइन हार्ले, उसकी ये 21 डेज की इनिशिएशन प्रोसेस थी, बहुत प्रसिद्ध, कई ये 90s में निकली ये प्रोसेस। इनिशिएशन मतलब ऊर्जा से हम कैसे जिए, इसमें हम कन्वर्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस के बाद, परंतु बाद में इसके बहुत सारे दुष्परिणाम दिखाई देने लगे, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। कई लोगों की मृत्यु हो गई, एक दो लोगों की, जिन्होंने गलत तरीके से करी ये प्रोसेस। इसके बाद इसके लिए आज के युग में ये प्रोसेस कोई भी नहीं करता है। तो फर्स्ट प्रोसेस है, 16 प्रकार की विधियां है, एक प्रोसेस है पहली 21 दिन की प्रोसेस, इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। इस 21 दिन में वो लोग क्या करते हैं जो ये गए थे, जैसे कहा ये प्रोसेस इज डेंजरस, आजकल कोई नहीं करता है ये, पर पहले ये बहुत चलती थी 90s में जब ये निकली, बहुत सारे लोगों ने किया, आज भी कोई कोई करते हैं ऐसा, थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ। इस प्रोसेस में एक गाइड की आवश्यकता होती है, आपको एक प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। अगर 10 लोग कर रहे हैं तो 10 लोगों का एक गाइड रहेगा, वो उनकी देखभाल करेगा, उनका सब कुछ, उनको जो चाहिए वो ला के देना वगैरह, केयर टेकर, एक सेवाधारी हमारी भाषा में, हाँ एक सेवाधारी लगता है इसमें। और एकदम संसार से दूर कहीं एकांत में किसी जगह पर ये प्रोसेस की जाती है, 21 डेज प्रोसेस, क्योंकि 21 डेज प्रोसेस के बाद फिर व्यक्ति को शाकाहारी भोजन की, फिजिकल फूड की आवश्यकता नहीं रहती। ये वो प्रोसेस है, ये दीक्षा है, ये इनिशिएशन कहते हैं इसको। इसके पहले 7 दिन बहुत हार्ड वाले होते हैं, निर्जला, ड्राई, ना खाना ना पीना। अगले 7 दिन जूसेस, वो भी डाइल्यूटेड 75%, उसके बाद 50% डाइल्यूटेड। पर देखा गया है जिन्होंने ये प्रोसेस की, सबके सभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, कई लोग वापस ईटिंग की अवस्था में चले गए, इसलिए ये प्रोसेस आजकल कोई यूज नहीं करता। इसके बाद अभी जब भी जो प्रोसेसेस निकली है वो है दूसरी प्रोसेस। एक है 8 डेज की रिकार्डो आखी, आप न्यूज इंटरनेट पे जा सकते हैं, ricardoaki.com, 8 डेज की प्रोसेस है उसकी। अगली प्रोसेस है एक 10 डेज की प्रोसेस रे मेयोर, इसराइल में रहता है ये व्यक्ति, उसकी एक प्रोसेस है जो 10 दिन तक लोगों को रखता है, पूरा दिन भर ट्रेनिंग चलती है उसमें। जैसे उस दिन प्राणिक पिकनिक में हमने थोड़ी सी झलक उसकी देखी थी 2-3 घंटे, वैसे टोटल 8 दिन वही दिनचर्या, जिसमें बॉडी माइंड सब कुछ अंदर से चेंज होने लगता है। तीसरी एक प्रोसेस है 11 डेज की, विक्टर ट्रिवियागो की प्रोसेस है। विक्टर ट्रिवियागो नाम का एक व्यक्ति है, अभी भी है, भारत में भी आया था, बहुत नम्रचित, उसकी एक प्रोसेस है। तो ये ऐसी अलग अलग, फिर एक जोइचिम की 7 वीक्स एडेप्टेशन प्रोसेस है, ये ऐसी अलग अलग प्रोसेसेस है जिसमें व्यक्ति अपने आप को एडेप्ट करता है। तो ये कुछ प्रोसेस है, इनकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, अभी हम सीधा आते हैं कुछ मेथड्स की तरफ। तो ये हो गई चार में, पहला 21 डेज वाला, एक 8 दिन वाला, एक 11 दिन वाला, एक 10 दिन वाला, और एक 7 वीक का एडेप्टेशन, ये सारा है। तो ऐसी कौन कौन सी विधियां है जिससे हम अपने आप को ऊर्जा से जीना सिखाएं, और जैसे हम उस ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करते, जैसे कहा बहुत सारी चीजों से हम मुक्त हो जाते, जैसे शरीर की बीमारियों से 0, बीमारी ऐसे शरीर को टच ही नहीं कर सकती, कोई दवाइयों का खर्चा नहीं, कोई भोजन का खर्चा नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें से हम मुक्त, और बहुत सारा टाइम मिलने लगता है मटेरियल चीजों से, अननेसेसरी अटैचमेंट से। जैसे आज की मुरली में, तुम्हारे ममत्व आखिर में सब खत्म हो जाएंगे, वो अभी हो जाएगा इस यात्रा में ही, किससे अटैचमेंट रखे, क्योंकि जो इस यात्रा पर निकलता है व्यक्ति, वो कभी भी उन लोगों से अटैच हो ही नहीं सकता जो कि इस यात्रा पर नहीं है, अपने आप उनसे डिटैचमेंट हो जाता है। जिनका रस खान पान और घूमना फिरना और आसक्तियों में है, उनसे अपने आप दूरी हो जाती है। हम नहीं छोड़ते, हम या तो हम छोड़ेंगे या तो वो छोड़ेंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। इसके साथ कोई फायदा तो है नहीं, छोड़ो। तो ये अवस्था, और सबसे बड़ा फायदा विकारों से मुक्ति, ये सबसे बड़ा फायदा है। इससे ऊपर और क्या चाहिए? अभी विकार आकर्षित करते हैं, विकार के प्रलोभन आते हैं, विकार हमको खींचते हैं, हम चाहते नहीं विकार का आकर्षण हो, फिर भी काम विकार डसता है सांप की तरह। सुबह का वरदान संसारी के लोगों के लिए जहरीले सांप है ये, काटते हैं, पर तपस्वी के लिए क्या हो जाएगा? वो शंकर तपस्वी जैसे ब्रह्मा, ब्राह्मणों के लिए क्या हो जाएगा? वो गले की माला, या फिर कृष्ण का स्टेज, डांस की स्टेज, स्थिति ही स्टेज है। कितना अच्छा वाक्य है मुरली में वरदान, स्थिति ही स्टेज है, इस स्टेज पर नाचोगे। विकारों से मुक्ति, इससे बड़ा कोई फायदा और क्या फायदा चाहिए? इस यात्रा में काम तो कर रहे हैं भोजन और ऊर्जा पर मिल क्या रहा है? विकारों से मुक्ति। अब वो उत्तेजना ही खत्म हो चुकी है, न उदासी, न ईर्ष्या, न घृणा, न भय, न चिंता, और अचानक संपूर्ण ब्रह्मचर्य प्रकट हो रहा है। ब्रह्मचर्य और ब्रह्माचर्य अपने आप, ये बहुत बड़ी अवस्था है। तो ये धीरे धीरे होगा, तो हम सब इस यात्रा पर है। ये मत समझना कि हम इस यात्रा के बारे में बता रहे तो हमें सब कुछ हो गया है। हम सभी, वी आर इन द सेम बोट, सेम सारे, एक दूसरे के सहारे ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो बनना है शंकर तपस्वी जिसके गले में सांप है, सुबह का वरदान। तो कुछ मेथड्स हम देखेंगे। कॉलेज की कुछ गर्ल्स डिस्कस कर रही थी कि किस तरह का हस्बैंड चाहिए, आइडियल हस्बैंड। तो एक कहती है, आई विल मैरी लॉर्ड शंकर, शंकर जो है ना, शंकर जी भगवान, शंकर भगवान से मैं शादी करूंगी। बाकी गर्ल्स कहती है, क्या इस युग की गर्ल्स इतनी मॉडर्न? और बोलती क्यों? बोलती बहुत सारी चीजें, सबसे पहला तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बच जाएगा, उसके सिर पर क्या है, चंद्रमा, लाइट शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पानी का खर्चा, क्योंकि पानी बहते रहता है। तीसरा कपड़े धोने का काम ही नहीं उसके, क्योंकि वो ऐसे ही घूमते रहता है। और चौथा, उसका भोजन पकाने की जरूरत ही नहीं है। ये चार फायदे हो रहे हैं। वो कहती है, ही इज माय आइडियल हस्बैंड, उससे ही शादी करूंगी। और भोलेनाथ, सबसे पहली, ये तो चार विधियां बताई, उसके पहली विधि है अभी इस प्रोसेस में आने के लिए नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में जो हम कई दिनों से देख रहे हैं, धीरे 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 जो भी अननेचुरल है उससे हम नेचुरल की तरफ आते हैं। दो चीजें लिखी रखी हुई है, एक अंकुरित रखा हुआ है और वही प्रोसेस्ड अंकुरित। तो हम प्रिफर करेंगे जो प्रोसेस नहीं है वो डायरेक्ट उसको लेने की। एक तरफ सूप रखा हुआ है, एक तरफ जूस रखा हुआ है, दोनों हम प्रिफर करेंगे जूस को। धीरे धीरे हमारी शरीर ही वो सारी चीजों को रिजेक्ट कर देगा कि वो अब मुझे स्वीकार, मतलब वो लिया तो गड़बड़ होती है कुछ। तो ये पहली मेथड है कि जिसमें हम धीरे 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 सारी आर्टिफिशियल चीजों से मुक्त होते जाएंगे, अवन छूट जाएगा, अवन और अवन से बनी हुई सारी चीजें, बेकरी और बेकरी के रिलेटेड सारी चीजें। नहीं तो लोग खाते ही रहते, चॉकलेट खाते रहते, बिस्किट खाते रहते, टोस्ट खाते रहते, ब्रेड खाते रहते और सैंडविच खाते रहते। बेकरी से मुक्त, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आसक्ति होती है उसमें, एडिक्शन होता है। और वो जब हम नहीं खाएंगे तो शरीर में उत्तेजनाएं नहीं होगी, शरीर शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। वो खाते ही वो तीखा, वो मसाला, वो तला हुआ उत्तेजनाएं उत्पन्न करता है, मन बदलता है। सारा कार्य जो हम अपने आप से जुड़े हुए हैं, ये उसको ढक देता है। अब मैं अपने आप को देख नहीं सकता, ये जो मैं हूं और मेरे इमोशंस है, ये इसको कवर कर देता है। अब मैं कहीं यहां हूं, बीच में एक बाधा आ गई है, क्लियर कट दिखाई नहीं देता है, अंदर अंदर चल के आ रहा है इमोशंस में। तो ये जो पहली स्टेज है इनिशिएशन की, इसमें चार प्रकार के हमारे जो शरीर है, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, इसमें बैलेंसिंग चालू होगा धीरे धीरे। अभी सब इम्बैलेंस है, कहाँ क्या होता है कुछ समझ नहीं आता है। इमोशंस अचानक से कोई नया इमोशंस आ जाते हैं, हम सोचते हैं आया कैसे, और फिर हम सोचते हैं हाँ ये पुराना संस्कार है वगैरह वगैरह, बट काम नहीं कर पाते डायरेक्ट उस पर। डायरेक्ट काम करने की विधि है ये नेचुरल, ये पहली विधि। पहली अर्थात कितनी, इसके पहले वो तीन चार बताए उसमें ये वो डेज वाली वो हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट नेचुरल। दूसरी मेथड है, फर्स्ट मेथड नेचुरल मेथड, दूसरी मेथड है स्पिरिचुअल मेथड। स्पिरिचुअल मेथड, कई लोग संसार में इस अवस्था तक पहुंचे स्पिरिचुअल मेथड से। प्रभु प्रेम इतना भरा था उनके अंदर कि उनको ये सब खान पान और ये सब चीजों में कोई आसक्ति खत्म हो गई। भोजन भवन भलो नहीं लागे, मीरा की अवस्था है ये, उसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहा स्पिरिचुअल पर। ये अवस्था में सब लोग जाए बड़ा मुश्किल है, इसलिए इतना प्रेम चाहिए प्रभु के प्रति, जैसे उस पार्वती का प्रेम था। बैठ गई, जब तक महादेव आंखें नहीं खोलेंगे मैं यहां से हिलूंगी नहीं। पार्वती की साधना है महादेव को पाने की, बहुत गहरी साधना है, और वो साधना शक्ति और शिव के मिलन की साधना है। क्योंकि पार्वती है शक्ति, शिव है महादेव है शिव, वो इतना जल्दी प्रकट नहीं हुए शिव उसके सामने। क्या कुछ करना पड़ा पार्वती को, सब कुछ। एक बार तो मर चुकी थी सती में, पर यहां पर पार्वती से महादेव तक की जो यात्रा है शिव की, ये शक्ति की शिव की तरफ की यात्रा है। उसने जो जो तपस्या की वो सारी तपस्या, ऐसा अमिट प्रेम, ऐसा था प्रेम चाहिए, तब उसका सब कुछ छूट जाता है बाहर का। वो करता नहीं है, वो को उसे तो पता भी नहीं प्राणिक लिविंग क्या होता है, ये ब्रदरियन क्या होता है, उसका स्वतः ही छूट गया, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है ये सब चीजों में। ये संतों के जीवन में देखा गया है, मीरा के जीवन में देखा गया, कबीर के जीवन में देखा गया है, कई कई सारे संतों के, सेंट निकोलास के जीवन में देखा गया है कि इनको इतना आगे बढ़ गई है प्रभु प्रेम में। क्राइस्ट क्राइस्ट चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखा गया, निरंतर कृष्ण 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 कृष्ण, दूसरा कोई चिंतन ही नहीं है, इतना गहराई में अंदर चले गए ये लोग। ऐसा कोई अभी वर्तमान में तो होगा ही नहीं शायद, इतनी प्रभु प्रेम की प्यास, इतनी इतना प्यार उससे कि उसके अतिरिक्त तो कुछ अच्छा नहीं लगता, ये संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, केवल बस उसकी याद। आठ आठ दस दस घंटे बैठ जाते जैसे योगी बैठते थे तपस्या में, उनको कुछ याद नहीं रहता है। ये सेकंड मेथड है इस अवस्था तक पहुंचने की। तीसरी मेथड, थर्ड मेथड, अल्टरनेट मेथड, इसमें व्यक्ति उपवास का मार्ग अवलंबन करता है, एक दिन खाता है एक दिन नहीं खाता है, उसको कहते हैं FM, फास्टिंग मील। फिर कई मास तक ये चलाता है, एक दिन खाएगा एक दिन, सबसे पहले शुरुआत में हफ्ते में एक दिन कुछ ना खाना ना पीना, इसकी आदत डालनी है। ये तो शुरुआत है, हफ्ते में एक दिन ये तो सबको करना ही चाहिए, साइंस भी इसको सपोर्ट करता है। अभी तो हफ्ते में एक दिन पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना है, अगर बीमारियों से छूटना है तो ये तो जरूरत है, रिसेट, इसको ऑटोफेजी कहते हैं। और इसके लिए अभी अभी दो तीन साल पहले जापान के एक डॉक्टर को इसके नोबेल प्राइज मिला, इस नए सिद्धांत को संसार में लाने के लिए। इसको कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी अर्थात जब सेल जो होता है हमारे, वो उसको कुछ भी खाना पीना नहीं मिलता तो उसके अंदर जो डेड सेल है उसको रिसाइकल करता है और बाहर फेंक देता है, और अपने आप शरीर की बीमारियों से ठीक होता है शरीर। वो कहता है कम से कम 16 घंटे भी किए हफ्ते में एक बार तो भी हो, ये काम चालू हो जाएगा ऑटोफेजी। इस पर नोबेल प्राइज मिला, इतना बड़ा काम किया। ये लेटेस्ट इन्वेंशन, अभी अभी की डिस्कवरी है, दो तीन साल पहले। तो ये तो अब साइंस भी मानता है उसको कि हफ्ते में एक दिन ऐसा हो जिस दिन हम अपने आप को फुल रेस्ट दे, कंप्लीट रेस्ट। और जो एकदम नहीं दे सकते 24 आवर्स, उनके लिए चालू करो 10 घंटे से। रात को 8 बजे खाया, अब अगले 8 बजे तक कुछ ना खाना ना पीना। फिर इस पर थोड़ी ग्रिप आ गई, फिर उसको एक एक घंटे से थोड़ा बढ़ाओ, 13 घंटा करो, पहले 10 घंटा, फिर 12 घंटा, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16 घंटे तक आ जाओ। हर दिन 16 घंटा ना खाना ना पीता, 8 आवर्स विंडो, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। फिर धीरे धीरे 24 आवर्स तक आओ, फिर हफ्ते में एक दिन 24 आवर्स ड्राई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रिप आने लगती है तब व्यक्ति फिर हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, और फिर ऑल्टरनेट डे, एक दिन खाता है एक दिन नहीं खाता, एक दिन खाता है एक दिन नहीं खाता। यहां से ये ऑल्टरनेट डे, फिर धीरे धीरे एक दिन खाएगा 2 दिन नहीं खाएगा, एफ एम एम, फिर एफ एम एम, फिर एक दिन खाएगा तीन दिन नहीं खाएगा, एफ थ्री एम, फिर धीरे धीरे हफ्ते में दो बार, फिर हफ्ते में एक बार, फिर जिस दिन निश्चित करेगा कि ये मेरे खाने का दिन है मंडे। ऐसे कई सारे लोग हैं आज वर्तमान में जो केवल सैटरडे संडे खाते हैं, बाकी दिन नहीं खाते। इसको वो इंटरमीटेंट फास्टिंग कहते हैं, उनका ये है इंटरमीटेंट फास्टिंग हफ्ते वाला। और कभी कभी ऐसा होता है जो उन्होंने खाने का दिन निर्धारित किया था मंडे, वो भूल गया तो अभी छोड़ देते, वो कहते अब अगली बार देखेंगे। धीरे धीरे इससे ही मुक्त, और उनके पास टाइम इतना बच जाता है, नॉवेल्स लिखते हैं, कंप्यूटर पर काम करते, रिट्रीट्स करते, पैसा कमाते, बिजनेस करते, संसार के काम करते, क्योंकि टाइम, क्योंकि मेजर जो टाइम था खाना पीना और ये सब में जाता था अब बच गया सारा, और नींद ही कम हो गई है। जागते रहते रात में, दो बजे तक जागते, तीन चार बजे उठ जाते, फिर काम करना चालू करते। और जरूरी नहीं है ये लोगों का लक्ष्य कोई अध्यात्म है, ये संसारी लोग हैं। सोचो अगर कोई आध्यात्मिक पुरुषार्थी ये करे तो सारी अव्यक्त मुरलियां ऐसे होगी मुट्ठी में, पंजे में, कि टाइम ही टाइम है। ये एक मेथड है, इसको कहते हैं अल्टरनेट मेथड। अगली मेथड है कॉन्शियस ईटिंग। कॉन्शियस ईटिंग ये मेथड इंडिपेंडेंट मेथड से है, सारी अपने आप में इंडिपेंडेंट, जो हमको उस लक्ष्य तक ले जाएगी। कॉन्शियस ईटिंग की मेथड क्या है, धीरे धीरे इसमें सब, जैसे भोजन है, सबसे पहला कारण है खाने का हमारे सप्रेस्ड इमोशंस। जैसे किसी की पत्नी मर गई, दुख आ गया जीवन में, जाके दारू पी लेता है, किस लिए, भूलने के लिए। उसी तरह भोजन हमको हमारे दुखों को भुला देता है, वो वही काम करता है जो दारू, सिगरेट, बीड़ी, एंटरटेनमेंट, फिल्म, तीन घंटा मूवी देखते क्या होता है, तीन घंटा में भूल जाते, परंतु केवल भूलता है टेम्पररी, बाद में फिर आ जाता है कुछ क्षणों के लिए। उसी तरह ये भी है, फूड कवर्स द इमोशन, इमोशंस को ढक लेता है। तो यहां पर भी थाली सामने है, तो कॉन्शियस ईटिंग अर्थात पूछो ये क्या है, क्यों खा रहा हूं, अपनी चेकिंग करो ऊपर से नीचे तक, बॉडी स्कैनिंग। कोई इमोशंस के लिए वजह से खा रहा हो, अभी किसी ने डिपार्टमेंट में इंचार्ज ने डांटा है तो रूम पे आने के बाद बेचैनी है, अब बेचैनी को कैसे मिटाए, खाओ, खाने के बाद बेचैनी शांत हो जाती है थोड़ी। किसी ने डांटा है, किसी ने एकदम डिप्रेस कमेंट्स कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, या कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, इसलिए खा रहे। पर यहाँ पे देखो क्यों खा रहा हूं, कोई इमोशंस की वजह से, व्हाट इज दिस, प्रश्न पूछो अपने आप से शांत होके, अच्छा ये नहीं है, फिर अभी नेक्स्ट प्रश्न पूछो, क्या है ये, फिर नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज दिस, फील करो उसको। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, स्लो करना पड़ेगा। आप क्यों ले रहे हैं, फिर क्या मुझे वास्तव में भूख है या नहीं है। यहाँ कार्य भोजन के साथ हो ही नहीं रहा है आशीष भाई, चर्चा भोजन की तो है ही नहीं, यहाँ चर्चा है इमोशंस की। इमोशंस, यहाँ हम इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अंदर जो इमोशंस का हलचल, तूफान, भूचाल मचता है, अचानक स्पर्ट होता है इमोशंस का, कुछ समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। उन इमोशंस को यदि समझना है तो उसमें जो फूड मिक्स्ड है, उस फूड को जैसे ही निकालेंगे फिर इमोशंस दिखाई देने लगते हैं। अच्छा ये है, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि फूड मिक्स्ड है, उसको हटाओ, थोड़ा सा सेग्रीगेशन कर रहे, आइसोलेट कर रहे, तो फिर पूछो अपने आप से क्या है ये, क्यों ले रहा हूं, क्या वास्तव में भूख है, और है भी तो एक एक चीज को देखो क्या है ये। और खाना है तो तुरंत लेके, तुरंत फटाफट नहीं, धीरे धीरे, टेस्ट, कल भी जो कहा था ना, टेस्ट, उसकी स्मेल, ये, और धीरे धीरे, और चबा चबा के धीरे धीरे, वो समय भी सोचते रहो ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या इसे मुझे आवश्यकता है। तो रोज जो चार रोटियां लेते हो, आज एक रोटी में ही पेट भर जाएगा, क्योंकि कॉन्शियस ईटिंग की है। रोज चार ग्लास चाहिए थे, आज एक ग्लास में ही काम हो गया, क्योंकि कॉन्शियस ईटिंग, बहुत कॉन्शियस ड्रिंकिंग, बहुत स्लोली स्लोली सोचते हुए, विचार करते हुए, ये क्या है, ये क्या है, फील करना है उसको। ये भी मेथड से करते जाओगे तो एक टाइम आएगा, ओवर ईटिंग खत्म हो जाएगा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे अपने आप को समझने लगेंगे, ये भोजन ही तपस्या बन जाएगी, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट तपस्या, और कुछ नहीं कर रहे, बस यही कर रहे, उसी को ही तपस्या का क्षेत्र बना दिया, इसको कहते हैं कॉन्शियस ईटिंग। ये भी एक विधि है उस प्राणिक लिविंग की फोर्थ स्टेज तक पहुंचने की, फोर्थ लेवल तक पहुंचने की। नेक्स्ट है फोर्स्ड, इसको रेकमेंड नहीं किया जाता है, फोर्स जबरदस्ती करने का, इससे नुकसान हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। ये फोर्स मेथड बिल्कुल नहीं करनी है। जबरदस्ती करते कई लोग कि हमें तो बनना है, इसने किया ना, देखा देखी, इसने किया मैं भी करूंगा। अरे ये तुम क्या खाते हो? सबसे पहला आप प्रश्न यही पूछते आके, ये क्लास होने के बाद आप क्या खाते हो, बस ये पहला प्रश्न है। तुमको क्या करना है? हर एक को अपना मार्ग ढूंढना है, किसी की देखा देखी कुछ नहीं करना है, क्योंकि हर एक का शरीर अपना है, हर एक के शरीर की आवश्यकता है। अब तक जो बचपन से कंडीशनिंग की है उस शरीर की, उसी अनुसार वो चलेगा। उसको अचानक अगर कुछ दूसरा दे दो तो भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कई लोग सीधा, जिनका फटाफट वेट लॉस हो रहा है, वो सब गलत मार्ग पर है। दे ऑल आर ऑन द रॉन्ग पाथ, वो इस मार्ग पर है ही नहीं। गाल अंदर चले गए, 4 किलो वजन, 6 किलो वजन कम हो गया, ये सब इस मार्ग पर तो नहीं है। वो अपना कुछ और करे, हाँ उनको शरीर के फायदे मिलेंगे जरूर, कोई बीमारी होगी तो उससे छूटेंगे, पर इस मार्ग पर वो नहीं है, ये मार्ग ही दूसरा है। यहां तो वेट स्टेबिलाइजेशन होना चाहिए, थोड़ा सा जाएगा पर एकदम नहीं। फिर उसके बाद में तो ये मेथड है सडन। उसके बाद में अगली मेथड है ट्राइंग की मेथड। ट्राइंग अर्थात प्रयत्न करते रहना। उसमें ऐसा करता है व्यक्ति, ये सब करता है, फास्टिंग वेस्टिंग, वेट कम हो गया तो फिर डरता है, फिर वापस आ जाता है, सब खाना चालू करता है, और जब वजन और बढ़ता है तो बोलते हैं अरे ये तो ज्यादा हो गया, फिर छोड़ता है, फिर आता है। ये प्रयत्न करते रहो तो भी होगा फिर एक दिन। ये भी अप डाउन वाला मार्ग है। इसमें 4 दिन करता है बहुत नशा में, क्लास बेस सुन के एकदम जूस, आज से ये सब बंद, जूस, और जूस में शाम को वेट चेक करता है, अगले दिन 2 किलो कम, हटाओ ये सब, और सीधा 4 किलो बढ़ा देता है एक ही दिन में। तो ये सब करने वाले, इसको कहते हैं ट्राइंग मेथड, जिसमें व्यक्ति एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में घूमते फिरते पेंडुलम की तरह इधर उधर होते रहता है कुछ साल तक, 2-3 महीना, फिर कच्चे पे आता है, रॉ लेता है, और फिर सारे लोग उसकी क्या हो गया, एक बार चेकिंग करा लो, टीबी जैसा लिख रहे हो, तो कैंसर तो नहीं हो गया, खाते पीते घर के दिखने चाहिए, हट योग, नाम मत खराब करो मधुबन का। तो ये सब उसमें से फिर ये सब खटाखट सब बंद, और फिर सब कुछ खाता है, और फिर एक दिन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहता है अरे तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, तुमको शुगर भी आ गया है बॉर्डर पे, बीपी भी ज्यादा है। वो कहता है बस 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 एकदम आज से सब बंद, फिर से उस तरफ आ जाता है, फिर सब स्टेबल हो जाता है, फिर रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं अब सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, डॉक्टर से सर्टिफिकेट मिल गए, अब बाय बाय, अब देखेंगे डॉक्टर को बाद में, अब ये वापस अपनी वो दिनचर्या, वो ग्रुप, वो टोली कहां चली गई, वो जो दोस्त थे पुराने खाने पीने वाले साथी, उनको तलाश करता है, आज फिर क्या बनाएंगे दोपहर को, आज फिर शाम का क्या प्रोग्राम है, फिर वापस चालू। तो ये इसको कहते हैं ट्राइंग मेथड, पर इससे भी बनेंगे, ये भी पहुंचाएगा। अगली मेथड है अल्केमिकल मेथड। अल्केमिकल मेथड बहुत डेंजरस है, इसमें कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिससे सन्यासी लोग यूज करते थे, जिससे भूख ही खत्म हो जाती है, पर वो जैसे वो मिलेगा नहीं तो भूख लगेगी। वो एक मेथड है, इसको गोल्ड, कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जड़ी बूटियां होती है, वो खाओ तो भूख ही नहीं लगती, भूख खत्म, वो मेथड सन्यासी यूज करते हैं, इसको कहते हैं अल्केमिकल मेथड। अगली मेथड है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में व्यक्ति ढूंढते रहता है, साइंटिफिक लिटरेचर खोज करता है कि क्या क्या साइंस कहता है, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन आजकल बहुत चल रहा है, कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस, वीगन बॉडी बिल्डिंग, दूध के प्रयोग नहीं यूज करना, वीगन पर बॉडी बिल्डिंग करो, प्लांट बेस्ड बॉडी बिल्डिंग पर किताबें आ गई है, क्योंकि देखा गया है जो लोग, क्योंकि जिम में जाते ही सबसे पहले क्या कहते हैं, 8 बार खाना है तुमको, और जिम आने से पहले खाना है, जिम के बाद खाना है, फिर 11 बजे खाना है, 8, हमने भी करके देखा, 8 टाइम्स मील करके देखा, माय गॉड, 3 दिन में पूरा नर्क था, 1 दिन में 8 बार खाना, ये करके भी देखा क्या होता है, लेट अस सी। क्योंकि जिम वाले कहते हैं ऐसा करो तो तुम्हारी बॉडी बनेगी, बॉडी ये तो पूरा जहर बन गया, वो उतना ही खाते है, पर 40 उम्र के बाद फिर उनको सारी बीमारियां चालू हो जाती है, हार्ट ब्लॉक होता है, सब चालू होता है, वो कहीं न्यूज़पेपर में नहीं आता है उनका, वो वाले ये वाले फोटो आते हैं पर वो वाले नहीं आते बात के, क्योंकि क्या क्या कचरा भर के रखा है, बॉडी फूलती है उसमें, मसल्स ऐसे बड़े बड़े पर अंदर टॉक्सिन्स, इसलिए वो मेथड नहीं है। इस मेथड को क्या कहा जाता है, साइंटिफिक मेथड। उसके बाद में अगली मेथड है हिप्नोटिक मेथड, हिप्नोसिस, व्यक्ति को हिप्नोसिस किया जाता है या खुद को हिप्नोसिस करता है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा पति नहीं, जैसे वो कहानी में बताया था, ये हिप्नोटिक मेथड। उसके बाद में है फिर सन गेजिंग, वो हमने देखा, वो इंडिपेंडेंट मेथड है, अपने आप करते जाओ भूख धीरे धीरे कम हो जाएगी। सन गेजिंग बेस्ट मेथड है। तो ऐसी ये कितनी हो गई टोटल, 16, 10, पहली जो चार थी वो। तो सबसे पहली मेथड है 21 डे प्रोसेस, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सेकंड मेथड है 8 वाली, 8 दिन, 10 दिन, 11 दिन, ये हो गई। फिर 7 वीक एडेप्टेशन, ये 5, और ये बाकी बची हुई नेचुरल, स्पिरिचुअल, सडन, फोर्सफुल, हिप्नोटिक, कॉन्शियस, ट्राइंग, फिलोसॉफिकल और सन गेजिंग और एल्केमिकल। तो ये सारी अलग अलग विधियां हैं संसार में जो बताई हुई है। और एक लास्ट मेथड है अपनी खुद की, ये सब हटाओ, अब खुद क्रिएट करो, क्योंकि हम अपने आप को जितना जानते हैं और कोई नहीं जानता। हम, मुझे पता है मेरी क्या क्या आसक्तियां हैं, मुझे पता है मुझे कब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अपनी मेथड खुद ही बनाना, ये सबसे बेस्ट मार्ग है। किसी को भी कॉपी नहीं करना है, किसी की देखा देखी नहीं करनी है, खुद डिसाइड करो कि अभी मुझे ये लेना है, मैं इसकी जगह क्या लेके देखूं। रोज ये चाहिए मुझे 8 बजे, लेट अस सी कि आज मैं ये ना लेके, चाय ना लेके ग्रीन टी लेता हूँ, हर्बल टी लेके देखता हूँ क्या होता है। अगले दिन देखा, अरे ठीक रहा सब, कोई क्रेविंग नहीं हुई, ठीक है मैं उस टी को रिप्लेस कर रहा हूँ हर्बल टी से। फिर देखा हर्बल टी को अब मैं रिप्लेस करके देखता हूँ लेमन वाटर से, नींबू पानी और शहद, ये भी ठीक चला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सेफ, मैं सेफ हूँ, आगे बढ़ो। रोज ये खाता हूँ, आज मैंने देखा सलाद ले लिया बहुत सारा, उसमें आलू बिल्लू डाल दिए, पेट भर गया, ठीक हूँ, आई एम सेफ। तो एक एक्सपेरिमेंट किया खुद पर, ऐसे रोज एक्सपेरिमेंट करते जाना, ये है अपनी मेथड। तो ये सबसे पावरफुल मेथड है। तो इस मेथड से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हमारी अपनी इजाद की हुई है ये। तो कोई भी मेथड करो, पर करना जरूर है, क्योंकि लक्ष्य क्या है हमारा, ये है ही नहीं ऊपर ऊपर का, लक्ष्य है सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश। क्योंकि ये करते करते इमोशनल डिटॉक्स होगा, जो अंदर के इमोशंस है वो बाहर निकलेंगे, मेंटल डिटॉक्स होगा, जो डीप संस्कार है वो बाहर निकलेंगे, स्पिरिचुअल डिटॉक्स होगा, ये सब कुछ होगा, और इतना गहराई तरीके से होगा, इतना डीप होगा कि हमको आश्चर्य होगा, हम कर कुछ रहे और हो क्या रहा है, काम तो भोजन को बदला पर निकल रहा है काम वासना, हमारा युद्ध हो रहा है किसी व्यक्ति के प्रति, 10 साल पहले जो घृणा थी वो बाहर निकल गई, वो निकल रहा है, हमको पता चलेगा कि अभी तक थी हमारे अंदर और ये भोजन ने उसे ढक रखा था। इसलिए ये मार्ग बड़ा गहरा है, दिव्य देह की ओर तपस्वी अविचल, जीवन भर अविचल चलना है, सच धर कर आएंगे आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन होकर, सबसे विमुख पिटोई बटोही पथ पर संभल संभल बढ़ता है, जीवन भर अविचल चलता है। तो आज अपने ऊपर खुद प्रयोग करना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रयोग करना, अपनी मेथड खुद इजाद करना, बनाना। ओम शांति।
ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन होकर, सबसे विमुख बटोही पथ पर संभल संभल बढ़ता है, जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमित साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हस कण कण गलता है, जीवन भर अविचल चलता है। फल और आस निराशा इसकी ओर कहा जिज्ञासा, बिहड़ता मेरा बनाता राही मचल मचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। पतझर के झंझावातों में जग के घातों प्रतिघातों में सुर भी लुटाता सुमन सिहरता, निर्जनता में भी खिलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है।